हम यहां पे रुके हुए थे कि केवल अपने मान और प्रतिष्ठा के लिए हमें बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। तो आइए इसके बाद में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कौन से अन्य नियम बताते हैं इनके बारे में हम सुने। लेकिन संक्षेप में जहां पिछली बार प्रवचन का अंत हुआ था, चर्चा ये हो रही थी कि आजकल लोगों को आकर्षित करने के लिए तो बड़े मंदिरों की कभी कभी आवश्यकता होती है, परंतु अगर करना भी है अपने मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना है, केवल प्रचार हेतु, और वो भी अगर धन बिना अधिक कष्ट से आए तो। हम ये देख रहे थे कैसे षड गोस्वामियों ने वृंदावन में भी बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन भगवान ने उनके पास बड़े बड़े दानी व्यक्ति भेजे जिन्होंने उनके लिए ये बड़े मंदिर बनवा दिए और फिर अच्छी तरह से सेवा आरंभ किए षड गोस्वामियों ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम केवल बड़े बड़े मंदिर बनाएं। हां, बड़े मंदिरों का अपना अपना स्थान है, परंतु अगर उन मंदिरों में प्रचार नहीं हो रहा है, अगर वहां कृष्ण कथा नहीं हो रही है, कृष्ण कीर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे बड़े मंदिरों का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा यह है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि मंदिर के ईंटों को बेचकर उससे पुस्तक छाप लें और पुस्तकों का वितरण करें, जिससे कि लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस तरह से रूप गोस्वामी के इस नियम के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टीका की थी। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। अब तक इन 64 नियमों में से 13 नियम हो चुके हैं। 14वां नियम इस प्रकार से है, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीविका के लिए भागवत और गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं और उनके फीस रहते हैं। अगर मुझे एक गीता का प्रवचन देना है, एक सप्ताह देना है, तो इतने लाख रुपए मुझे देने चाहिए, या एक घंटे का प्रवचन होगा तो फिर मुझे इतने हजार रुपए मिलने चाहिए। पैसे सामने रखो, फिर हम बात करेंगे। तो इस तरह से भागवत या गीता के प्रवक्ता को चाहिए कि वो बिना कोई भौतिक हेतु अपने मन में रखे हुए, केवल प्रचार हेतु, लोगों को केवल कृष्ण भक्ति में अग्रसर करने हेतु वो गीता भागवत के ऊपर कुछ बोले। और अगर भगवान की योजना से प्रचार के माध्यम से थोड़े लोग प्रेरित हो जाएं कुछ दान देने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अपनी जीविका के लिए, स्वार्थ के लिए हमें भक्ति का लाभ उठाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद इसके बारे में बहुत टीका किया करते थे। कहते थे कि ऐसे लोग वास्तव में अवैष्णव हैं। वैष्णव होते हुए भी उनके मुख से भागवत या गीता सुनकर हमें कोई लाभ नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति है या जो ऐसे संप्रदाय में आ रहा है जो प्रामाणिक है, ऐसे व्यक्तियों से अगर हम गीता भागवत सुनेंगे तो हमारा वाकई लाभ होगा। दूसरी बात यहां पे यह है कि अगर कोई अपने जीविका के लिए भी भला नहीं कर रहा हो, परंतु मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हो, वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हो कि देखो मैंने कितने सारे किताबें पढ़े हैं और कितने जगह जगह से मैं प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, मैंने ये किताब पढ़ा है, वो है, ये पढ़ा, वो पढ़ा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे मान प्रतिष्ठा के लिए भी ज्यादा किताबें इधर उधर से पढ़नी नहीं चाहिए। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं हमारे लिए चार किताब पर्याप्त हैं। कौन से हैं वो? भगवद गीता जैसे है वैसे यथारूप, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छा बहाना मिला कि प्रभुपाद की दूसरी किताब नहीं पढ़ना है। चलो, प्रभुपाद ने खुद कहा केवल चार किताब पढ़ो, तो हमारे मंदिर के स्टॉल में जितने अन्य प्रभुपाद की किताबें हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि ये चार हमारे मूल ग्रंथ हैं, इनके आधार पर जो अन्य ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद चेतावनी किस बात की दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए, प्रचार के लिए करना चाहिए, भक्ति के वृद्धि के लिए करना चाहिए। अगर इस भावना से कोई इन किताबों को पढ़े, वो भी प्रामाणिक संप्रदायों, हमारे जो संप्रदाय है उसकी किताबें पढ़े, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है। उसी तरह से कभी कभी प्रचार के लिए हमें थोड़े बहुत इधर उधर की किताब पढ़ने भी लगें, पढ़ें, तो अधिक नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है कि लोग बहुत ज्यादा उन किताबों में ही रमण करने लगते हैं, भक्ति के जो मूल किताबें हैं उनको ही भूल जाते हैं। लेकिन हमारे भक्तों के समाज में, इस्कॉन में और विशेष करके बेलगाम में ये समस्या नहीं है। ये नियम क्या है? नियम है कि ज्यादा किताब नहीं पढ़नी चाहिए भक्ति के बारे में। ये समस्या हमारे लिए नहीं है, बराबर है ना? समस्या क्या है? किताब पढ़ते ही नहीं है, ये समस्या है। तो अधिक किताब पढ़ने की बात तो दूर है, पहले तो जो हमारे मूल किताब है, छोटे छोटे किताब कम से कम, उनको तो हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, रोज इनका पठन करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी अपने किताबों को पढ़ता है, उसी तरह से भक्त को चाहिए कि एक विद्यार्थी के रूप में प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छी तरह से दैनिक रूप से पढ़े, समझने का प्रयास करे, अपने किताबों में वो लिखें जो मूल से अच्छी अच्छी बातें लगती हैं इन किताबों से, और इन किताबों की जो दर्शन है या अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अनेक भक्तों के साथ चर्चा करें। ये हमारे चर्चा का विषय होना चाहिए। सोचिए कितना अच्छा वातावरण निर्माण हो जाएगा भक्त समाज में। भक्त आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं। मैंने भक्ति रसामृत सिंधु का 25वां अध्याय पढ़ा कल, और इसमें ये बात बताई गई थी, कितनी सुंदर बातें हैं, और फिर उस विषय में चर्चा होती है। तो अगर सब भक्त ऐसे ही करते रहें तो कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा। अब दूसरी ओर देखिए, हम दो भक्त मिलते हैं और भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में चर्चा करने के बजाय कोई प्रजल्प करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कोई भक्ति की वृद्धि नहीं होती है, कोई लाभ नहीं होता, केवल नुकसान ही होता है। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन किताबों को, तो ये भी एक तरह का श्रवण है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और हम अपनी आंखों से सुन रहे हैं, और फिर जैसे हम श्रवण करते हैं फिर उन चीजों के बारे में हम स्मरण करते हैं कि हाँ कल हमने क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा था, फिर उसके बारे में हम कीर्तन करते हैं। तो श्रवण स्मरण कीर्तन, श्रवण स्मरण कीर्तन, इससे हमारा चित्त जो है वो कृष्णमय हो जाता है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जो भक्त नियमित तौर से इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, निश्चित रूप से 100% वो शीघ्र ही प्रगति करेंगे भक्ति में। जो भक्त इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं या जो श्रवण व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं, उनकी प्रगति धीरे होगी, ये निश्चित है। तो जिन भक्तों को जल्दी से प्रगति करना है, इसी जीवन में शुद्ध भक्त बनना है, उनको इन ग्रंथों को अच्छी तरह से रोज पढ़ना चाहिए। पांचवा, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। सामान्य आचार व्यवहार, छोटी छोटी चीजों में भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान की ओर से हम बहुत कुछ जिम्मेदारी भी संभालते हैं। कई बार सोच लीजिए, कोई पैसों के बारे में, हम कुछ मंदिर के लिए खरीदने जा रहे हैं, या मंदिर की ओर से कुछ दान स्वीकार कर रहे हैं, या कुछ और ऐसे खर्चे की बात है, पैसे के लेन देन की बात है, तो हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। होशियार इसके लिए कि भले हम ईमानदार रहें, परंतु ये संसार ऐसे है कि हमें हर चीज का हिसाब किताब अच्छी तरह से रखना चाहिए। जैसे व्यक्ति अपने व्यवसाय में कैसे अच्छा हिसाब किताब रखता है, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहां खर्च हुआ, उसी तरह से मंदिर के लिए भी हमें बहुत सावधानी से हिसाब किताब रखना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो हम तो दिव्य काम भगवान के लिए, चलो जो भी कुछ हम कर सकते हैं, भले हमारे हृदय शुद्ध हो, परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं लापरवाही इन चीजों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में तरह तरह के गलत फहमियां हो सकती हैं। साथ साथ में सामान्य आचार व्यवहार का मतलब, जैसे हम आपस में भक्तों में मिलते हैं, किसी को अच्छी तरह से हरे कृष्ण कहना, हरे बोल कहना, जहां तक हो सके सबके साथ अच्छे व्यवहार रखना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब साधारण चीजें हैं। तो ऐसे अगर हम छोटी छोटी बातों में भी ध्यान देंगे तो इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। छोटे छोटे अगर जगह हम गलतियां करेंगे, वो छोटी छोटी गलती आगे चल के इनका परिणाम बहुत बड़ा हो जाता है। आगे रूप गोस्वामी बताते हैं, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। जिस भक्त के हृदय में भौतिक भावनाएं बहुत उमड़ रही हैं, वो भक्ति नहीं कर सकता। समझ लीजिए, किसी भक्त के हृदय में बहुत क्रोध है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, या बहुत द्वेष है किसी दूसरे के प्रति, या समझ लीजिए कि उसका कोई व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसके लिए बहुत दुख हो रहा है उसको, दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है, शोक कर रहा है, तो ऐसी भौतिक भावनाएं जब हमारे हृदय में तीव्र रूप में रहेंगी तो हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकेंगे। केवल उसी चीज के बारे में या उसी व्यक्ति के बारे में हम चिंतन करते रहेंगे और कृष्ण भक्ति हमसे नहीं होगी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन द्वंद्वों में, जो कि संसार में आने ही वाले हैं, शत प्रतिशत हमें जानना चाहिए कि ये सब आने ही वाले हैं, तो इनमें हमें समबुद्धि में रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। हां, थोड़ा बहुत विचलित होना तो स्वाभाविक है, परंतु अगर अति हो जाए तो हमें जानना चाहिए कि भक्ति के ऊपर काफी यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब भी उसके जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति आए जो उसे लगे कि ये प्रतिकूल है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि यह भगवान की कृपा है। भगवान ने हमें ऐसे परिस्थिति में डाला है हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। भगवान की एक परीक्षा है, भगवान की भेंट है ये, ऐसा समझ के हमें आगे चलना चाहिए। आगे 17वें नंबर में रूप गोस्वामी कहते हैं, देवताओं का अनादर न करना। अनादर न करना ये भी एक नियम है। हम तो हमारे मंदिरों में, हमारे किताबों में सुनते रहते हैं कि कृष्ण और देवताओं में अंतर क्या है। अंतर है कि नहीं है? है। क्या अंतर है? देवता श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण पूर्ण हैं, देवतागण अंश हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, देवतागण देवी देवता कृष्ण के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं को ही प्रधान समझते हैं, उनको ही परम समझते हैं, भगवान समझते हैं, तो यह भगवान कृष्ण के प्रति एक अपराध हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम देवी देवताओं को हीन दृष्टि से देखें या उनका निरादर अनादर करें, यह भी उचित नहीं, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रतिनिधि हैं, यह भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। तो जब हम उनको अलग तरह से हम पूजना भी नहीं चाहते, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनका निरादर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी जब तीर्थ यात्रा में गए थे दक्षिण भारत में, अपने रास्ते में अगर उन्होंने कोई देवता का मंदिर देखा, जैसे शिवजी का है जो कि महान वैष्णव हैं, तो वो वहां पर जाके प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे उस देवता का। तो हम जब देवताओं के सामने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इस दृष्टि से नहीं करना चाहिए कि ये भगवान है, इस दृष्टि से करना चाहिए कि ये भगवान के भक्त है। जो व्यक्ति देवताओं का तिरस्कार करता है वो भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। 18वां, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। हम भक्ति करते हैं, हमारा जाप करते हैं, भक्तों के संग में दासानुदास बन के रहते हैं, लेकिन बाहर रह के हम लोगों को कष्ट देंगे, प्राणियों को कष्ट देंगे, तो ये ठीक नहीं है। इसमें भी हमारी भक्ति में बाधाएं आ सकती हैं। विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि लोग आजकल सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, परंतु साथ साथ इतने बड़े बड़े सरकार द्वारा कत्ल खाने खोले गए हैं जिसमें पशुओं की हत्या होती है, निर्दोष पशुओं की, जो मासूम हैं, जो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जो भी भगवान के कुटुंब के सदस्य हैं, जो कि हमारे रक्षा के प्रेम के पात्र हैं, ऐसे निर्दोष पशुओं की हत्या हम करेंगे केवल हमारे जिह्वा के लिए, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, सभ्य समाज का लक्षण नहीं है ये। उसी तरह से किसी भी साधारण व्यक्ति को भी, पशु को भी, प्राणी को भी बिना वजह हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। हम ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, सड़क में हो, हमारे व्यवसाय के समय, हमारे घर में, समाज में, जहां भी हम हो, मंदिर में, बिना वजह के किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वैसे भगवान का भक्त वो होता है जो चींटियों को भी सम्मान देता है। मृगारी के बारे में, मृगारी की कथा आप सबने सुनी है, तो देवताओं को क्यों नहीं हम सम्मान देंगे, और चींटियों को सम्मान दे रहे हैं तो ये संसार के प्राणियों को, मनुष्यों को क्यों नहीं हम आदर से उनके साथ व्यवहार कर सकेंगे। प्रभुपाद कहते थे कि मेरा भक्त वो है जो एक भद्र व्यक्ति है, सज्जन है, सबके साथ उसका बर्ताव अच्छा रहता है, क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि आप घर में कितने माला करते हैं, आप मंदिर में कितने बार आते हैं, लोग ये देखेंगे कि हमारा व्यवहार कैसे है, हमारे रहन सहन कैसे है, हमारी बोली कैसी है, किस तरह से हम समाज में बर्ताव करते हैं, ये सब लोग देखेंगे, ये हमारा प्रचार है। इसलिए साधारण व्यक्तियों के साथ, प्राणियों के साथ बिना वजह उनको कष्ट हमें नहीं देना चाहिए। उन्नीसवां है, भगवान के नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। इनके बारे में तो हम दो बार, दो रविवार को चर्चा कर चुके हैं, तरह तरह के अपराध, जैसे कि को बताइए, मंदिर में आके कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कोई उदाहरण? अर्चा विग्रह के सामने जोर से बातें नहीं करना, चिल्लाना नहीं, किसी के सामने गुस्सा नहीं करना, उनके ऊपर उनकी निंदा नहीं करना, और प्रदक्षिणा भगवान के सामने नहीं करना, रोना नहीं, हाय हाय मेरा नुकसान हो गया व्यवसाय में, पत्नी के साथ, पति के साथ झगड़ा हो गया, हाय हाय करके भगवान के सामने आके रोना नहीं चाहिए, छाती पीटना नहीं चाहिए, शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। भगवान को ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ बस हो गया, अब ये संसार बहुत हो गया, कृपा भी आपके चरणों में हमको आश्रय दीजिए। और कैसे क्या करना चाहिए, मंदिर में आने के बाद दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए। अभी सीधा सब लोग सीधे बैठ गए नहीं, प्रभुपाद जी का एक टेप है जिसमें वो जप करते हैं, उनके जप का टेप। वो अपने भक्तों के साथ शायद बैठे हुए होंगे उस समय, तो जप करते करते शायद उन्होंने देखा होगा कि एक भक्त जो है वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा होकर सो रहा है। तो उन्होंने अंग्रेजी में एकदम कड़क शब्दों में कहा, ठीक से बैठो। तो हम लोग एक बार एक बस में जा रहे थे भक्तों लोग, और ये टेप लगाया हुआ था। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा सब लोग एकदम ठीक से बैठ गए। तो कभी कभी ऐसे याद दिलाना पड़ता है। तो मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए, अपने घुटनों में हाथ जोड़ के ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तरह तरह से हम चर्चा कर चुके थे कैसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पैर फैला के बैठना नहीं चाहिए भगवान के सामने इत्यादि। तो इन नियमों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 20वां, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। ये हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। न हमें करना चाहिए किसी वैष्णवों की निंदा, न हमें सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भक्ति लता बीज मुरझा जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये निंदा करने की जो प्रवृत्ति है, हम बाहर के संसार से लेकर आए, हमारे साथ में सामान लेकर आए। हम अभक्ति थे पहले, अभी भक्ति में आए, साथ साथ में पुराना थोड़ा सामान लेकर आए, हम हमारे अनर्थ हमारे हृदय में लेकर आए, तो स्वाभाविक तौर से थोड़े हद तक वो रहेगा हमारे हृदय में। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भक्त सिंसियर है, प्रगति करना चाहता है भक्ति में, वो इस तरह से वैष्णवों की निंदा से बच के रहेगा, बहुत दूर रहेगा, 10 मील दूर रहेगा। और अगर दूसरे कोई निंदा कर रहे हैं वैष्णवों के, तो क्या करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों में बताया है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि वैष्णव की निंदा सुन रहा है दूसरे के मुख से, उसके सामने 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है कि तर्क करके उस व्यक्ति को हरा दे और उसको गलत सिद्ध कर दे, ताकि फिर वो आगे निंदा नहीं करे। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं, तो शास्त्रों में बताया है अपने को प्राण त्याग देना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तो नहीं करना चाहिए, कठिन हो जाएगा। हर बार ऐसे करते रहे हैं तो फिर कोई रहेगा ही नहीं भक्त, बहुत मुश्किल हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसे नियम क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि बताने के लिए कि कितनी बड़ी भूल है ये अगर हम ऐसा करेंगे तो। और अगर प्राण भी नहीं त्याग सकते, तो कम से कम उस स्थान को छोड़कर हमें जाना चाहिए, ये शास्त्रों में बताया हुआ है। और एक जगह ऐसे भी बताया हुआ है, हमने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है तो उसका जीभ काट देना चाहिए, ऐसे भी बताया हुआ है। अब इसका मतलब नहीं कि हम प्रत्यक्ष रूप से करें, लेकिन ये जो तीसरा उपाय है या पहला, या तो हम सिद्ध कर दें कि ठीक नहीं है, या तो फिर हम उस जगह को छोड़ के चले जाएं, यही ठीक है। तो प्रभुपाद जी ऐसे हमको चेतावनी देते हैं, हम सबको, कि किस तरह से हमें वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए। वैसे वैष्णव निंदा ये कितनी हानिकारक हो सकती है, इसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि इससे बहुत बच के रहे, बड़े प्रेम से हम सब भक्तों के समाज में रहे। फिर प्रभुपाद जी यहां कहते हैं, उपर्युक्त 10 नियमों का पालन, मतलब ऊपर के 10 और उसके पहले के 10, 20 पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें से प्रथम तीन प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन 20 नियमों का सारांश दे रहे हैं रूप गोस्वामी और आगे चल के अन्य नियमों का वर्णन करने जा रहे हैं। पहला मतलब 21वां, शरीर पर तिलक धारण करें, यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। सब वैष्णवों को चाहिए कि हमेशा तिलक पहन के जाएं। रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत करके बताते हैं कि वैष्णव को तिलक क्यों पहनना चाहिए। पहली बात तो जब लोग ऐसे वैष्णव को देखते हैं, उसका तिलक देखते हैं, तो वो कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो हम लोग जब तिलक पहनते हैं, हम अपने आप को तो नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे लोग हमें देखते हैं और हमें देखकर शायद वो वैष्णव हो सकते हैं, वो कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो हमारे तिलक पहनने की वजह से कितने लोगों को हम कृष्ण का स्मरण करा रहे हैं। आजकल लोग तरह तरह के कमीज पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह, तरह तरह के बकवास चीजें टी शर्ट पे लिखा के ले जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ, कोई मतलब नहीं। कोई विश्वविद्यालय, अमेरिका का विश्वविद्यालय, या कोई खेल खिलाड़ी का कोई चित्र होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जिसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे हमें चिन्ह धारण करने चाहिए शरीर के ऊपर, जिससे लोगों को कृष्ण का स्मरण हो जाए, और साथ साथ हमारे लिए भी इसका बहुत फायदा है। शास्त्रों में बताया है कि जो व्यक्ति वैष्णव तिलक ऊर्ध्व पुंड्र, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाने वाला, जो भक्त ऐसे धारण करता है तिलक, इस तिलक को देखकर यमदूत वहां से दूर रहते हैं, पास में आते नहीं है, नो एंट्री साइन उनके लिए, प्रवेश बंद है। तो मार्ग पे आए भी गलती से तो वहां उनके लिए बोर्ड लगा होता है, प्रवेश निषेध, या नहीं आ सकते, यमदूतों के लिए प्रवेश निषेध, यमदूत नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तिलक विलक पहने और फिर वर्जित कार्य करें, यह भी ठीक नहीं। तिलक पहनकर सिनेमा जाएं, फिर सिनेमा में यमदूत नहीं आएंगे क्योंकि हम तिलक पहने हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को धोखा नहीं दे सकते हम। तो ये पवित्र चिन्ह है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षणों का वर्णन जब हो रहा होता है कि कलयुग में लोग सोचेंगे कि केवल स्नान करने से हम बाहर समाज में पब्लिक में जाने के लिए योग्य हो गए। आजकल लोग ये भी नहीं करते, परंतु केवल स्नान करने से हम दूसरों के सामने आने के लिए योग्य नहीं होते। स्नान करना तो कम से कम की बात है, उसके बाद हमें तिलक धारण करना चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए, इस तरह से हमें बाहर आना चाहिए। कोई ना कोई तरह का तिलक, वैष्णव तिलक हमें धारण अवश्य करना चाहिए, और अन्य कई ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको हम धारण कर सकते हैं, वो बताते हैं यहां पर रूप गोस्वामी। दूसरी बात, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। आपने शायद वृंदावन में या मायापुर में बाबा जीयों को देखा होगा, अपने शरीर पर तरह तरह के मुद्राएं वो स्वीकार करते हैं, कहीं हरे कृष्ण लिखा होगा, कहीं राधे राधे लिखा होगा, कहीं शंख चक्र गदा पद्म की मुद्राएं होगी, तो तिलक से लगाई होती हैं। और जैसे हम लोग रोज तिलक लगाते हैं, वो तिलक के अलावा ये भी मुद्रा लगाते हैं, तो ये भी बहुत लाभदायक है हमारे लिए। फिर तीसरी बात, अर्चक विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। मतलब भगवान का प्रसाद और महान भक्तों का प्रसाद। हम भगवान को भोजन भोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य में रखते हैं, और समझते हैं कि यह प्रसाद है, यह अवश्य सही है। लेकिन और कई चीजों को प्रसाद कहा जाता है, केवल भोजन नहीं। जैसे जो फूल हम अर्पण करते हैं भगवान को, वो भी प्रसाद है भगवान का, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया हुआ है। भगवान को जो हार पहनाते हैं फूलों का, तो वो भी हमें बड़े आदर से, प्रेम से, भक्ति भावना से स्वीकार करना चाहिए। उसके ऊपर कभी पैर रखने नहीं चाहिए, उनको इधर उधर गंदी जगह रखना नहीं चाहिए। बड़े ध्यान पूर्वक उसको ऐसे जगह में डाल देना चाहिए जहां उसका तिरस्कार ना हो। बाहर की दुनिया में लोग फूलों का हार पहनाते हैं सम्मान करने के लिए किसी का, तो उसका वो जो भावना है वो अलग है। लेकिन भक्तों के बीच में हम भगवान को अर्पित किए हुए जो हार होते हैं वो कभी पहनते नहीं है। जैसे ये हार है, ये प्रभुपाद का हार है, प्रभुपाद को अर्पण किया हुआ, या तो कोई भगवान का हार पहन सकते हैं। तो ऐसे नियम है कि हमें थोड़े समय के लिए तो कम से कम धारण करना चाहिए। वैसे बाहर की दुनिया में जब लोगों को हार पहनाया जाता है तो तुरंत एक क्षण में निकाल के रख देते हैं, है ना, आपने देखा है। लेकिन भगवान के हार जब हमें मिलते हैं, थोड़े समय के लिए तो कम से कम हमें धारण करना चाहिए, बहुत लाभदायक है। बताया जाता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम ऐसे निर्माल्य, इसको कहते हैं निर्माल्य, मतलब ये सब फूल इत्यादि भगवान के अलग अलग चीज जो अर्पण किए उनको, उनको पहनते हैं तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है और भक्ति में हम बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में उद्धव श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो आपका प्रसाद ही सेवन करता हूं, आपको अर्पण किया हुआ भोजन उसका उच्चिष्ट मैं ग्रहण करता हूं, आपको अर्पण किए हुए फूलों की माला, गंध इत्यादि मैं स्वीकार करता हूं और जानता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया है। इस तरह से भगवान के निर्माल्य को ऐसा स्वीकार करने से भक्ति में हमारा बहुत लाभ हो जाता है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा करने से हमें यमदूतों से सुरक्षा मिलती है। इसलिए बताया जाता है कि जब वैष्णव कि अपने प्राण को त्याग देता है तो उसके शरीर के ऊपर हम ये निर्माल्य रखते हैं, भगवान का प्रसाद, हरिनाम चादर इत्यादि रखते हैं। वैष्णव के लिए तो कोई यमदूत नहीं आ सकते, लेकिन सम्मान करने के लिए। इसलिए इन चीजों को हमें बड़े सावधानी से लेना चाहिए। हम जब आते हैं तो भगवान के फूल को अर्पण किए हुए फूलों को हमें सूंघना चाहिए, अपने साथ से माथे से टेक लेना चाहिए। ऐसा सम्मान करने से हमें बहुत फायदा होगा। और स्कंद पुराण में भी नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से भगवान के निर्माल्य को अपने शरीर पर धारण करता है, स्वीकार करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे रोगों से भी मुक्त हो जाता है, नरक से भी बच जाता है। हालांकि भक्तों का उद्देश्य यह नहीं होता कि वो नरक से बचे या रोगों से बचे, परंतु देखिए भगवान के हार को केवल स्वीकार करने से कितना लाभ हो सकता है, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। आगे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, अर्चक विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। लोग अक्सर कहते हैं ठीक है आपके मंदिर में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये नाचते हैं ना, हमको जरा मन हमारा विचलित हो जाता है, आप लोग नृत्य क्यों करते हैं। कहीं आपने भी सुना होगा ना कि आप नृत्य क्यों करते हैं। वैसे ये रूप गोस्वामी बताते हैं ये एक नियम है भक्ति का, भगवान के सामने नृत्य करने के लिए सीखना चाहिए। लेकिन किस तरह का नृत्य करना चाहिए, वो जो बाहर गणेश चतुर्थी के टाइम में लोग वो करते हैं वैसे टाइप का नृत्य नहीं करना चाहिए। वो सड़क पे आते हैं दंगा करते हैं, उस तरह का नृत्य नहीं करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया है, देखिए कैसे महाप्रभु नृत्य किया करते थे, तो इस तरह से हमें मधुर ढंग से नृत्य करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। केवल हमारे मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, हमारे अंदर जो रजोगुण है या क्रोध है उसको निकालने के लिए वो नहीं, हाँ वो खुद ब खुद निकल ही जाता है, परंतु बड़े मधुर ढंग से हमको नृत्य करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह के सामने नृत्य करना चाहिए। तो हमें महाप्रभु के पद चिन्हों में चलना चाहिए, कैसे वो नृत्य करते थे और उनके भक्त कैसे नृत्य करते थे, उसी तरह से हमें भी नृत्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी जब रथ यात्रा निकालते थे अमेरिका में और अन्य जगहों में, कई चित्रों में आपने देखा होगा, उस समय शायद प्रभुपाद जी की आयु 70 से अधिक थी और कभी कभी 80 से पास भी, लेकिन फिर भी हालांकि इतने वो वृद्ध थे और कभी कभी इतने बीमार होते थे, लेकिन कम से कम हाथ ऊपर करके अपने पैरों को ऐसे करके झूमना वो नहीं भूलते थे, और कभी कभी जब शरीर नहीं साथ देता था हाथ जोड़ के खड़े रह जाते थे। और कई बार ऐसे वीडियो में भी देखे हैं या वर्णन भी सुने हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि वो भक्तों के कीर्तन को देखकर सुनकर इतने उत्साही हो जाते थे कि खुद वही अपने जगह में उछल कूद करते थे, नृत्य करते थे उस उम्र में सड़क के ऊपर ही। तो इस तरह से हमें भी मंदिर में अच्छी तरह से नियम के तौर से हमें नृत्य करना चाहिए, लेकिन अपने भक्ति भाव से करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा नृत्य ये कोई प्रदर्शनी न हो जाए, हम दूसरे लोगों को दिखाना नहीं चाहते, देखो हम कितने अच्छे नृत्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में भावना होनी चाहिए, सब भक्तों को एकत्र होकर नृत्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भक्त अकेले इधर करे, कोई अधर अकेले उधर करे, नहीं। अकेले अकेले करने से क्या होता है कि लोगों का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित हो जाता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं चाहता। भक्त अन्य भक्तों के संग में रहकर वो अगर नृत्य करे तो कितना अच्छा लगेगा, वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें, नमन करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि हम आपके दास हैं, जबकि बाहर की दुनिया में हमको सिखाया जाता कि हम किसी के दास नहीं हैं, हम प्रभु हैं। केवल भगवान के सामने, गुरु के सामने, महान वैष्णव खास करके सन्यासी को जब हम देखते हैं तो तुरंत हमें प्रणाम करना ही चाहिए, और ऐसा करने से बहुत सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। एक और अगर कोई कर्मकांड का कोई एक विधि करे और दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण के सामने आके दंडवत डालता है, तो इन दोनों कार्यों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। जो कर्मकांड की विधि है उसको करके व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त होगा, हो सकता है कि वो स्वर्गलोक की प्राप्ति भी कर ले, परंतु उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक कर ही रहेगा। परंतु कोई साधारण व्यक्ति भी अगर आके श्रद्धा पूर्वक भगवान के सामने या शुद्ध भक्त के सामने, जैसे प्रभुपाद है यहां, उनके सामने दंडवत डालते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो भगवान के धाम के जाने के लिए योग्य है, तुरंत नहीं लेकिन उस पथ उस यात्रा में उनकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए ये जो दंडवत डालना, ये बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लाभदायक है। थोड़े दिन पहले हम यहां पे प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, सोमवार, हर सोमवार यहां सुबह को प्रभुपाद जी प्रवचन देते हैं, तो इसमें वो प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि कौन श्रेष्ठ है जो भारत में रहते हुए देवी देवताओं की पूजा करता है, या समझ लीजिए कोई दूसरे धर्मों के लोग हैं जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, वगैरह वगैरह, कौन श्रेष्ठ है। अब हम लोग तो कहते ही हैं कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, और देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं, जो लोग भौतिक कामनाओं से जिनका मन भर गया है, हम ऐसा सब कहते हैं भगवद गीता के आधार पर। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा था कि ठीक है, कृष्ण भक्तों की तुलना से तो देवी देवता नीचे वाले श्रेणी में हैं, परंतु देवी देवताओं के उपासक और अन्य धर्मों के जो अनुयायी हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? आप में से कोई उत्तर देंगे, कौन श्रेष्ठ? को कितने लोग सोचते हैं कि देवी देवताओं के उपासक श्रेष्ठ हैं? हाथ ऊपर कीजिए। इन दोनों श्रेणियों में से ही, कृष्ण भक्त की तुलना में नहीं। कितने भक्त सोचते हैं कि अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं? कोई तीसरा भी जवाब है? हाँ, प्रभुपाद ने कहा देवी देवताओं के उपासक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कहने लगे कि कम से कम वो वेदों के घर में हैं, और उनके मन में कम से कम ये भावना रहती है कि अगर हम कृष्ण के सामने आए थोड़ा नमस्कार तो करें, थोड़ा दंडवत तो करें। एक देवी देवता का उपासक जो है वो आकर यहां कृष्ण मंदिर में नमस्कार भी कर लेगा, भले ही वो किसी देवी देवता का कट्टर उपासक भी हो, तो यहां आके प्रणाम करने में उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, शायद कर भी ले। तो एक बार उसको जो दंडवत वो करेगा भगवान कृष्ण को, उस एक दंडवत से वो अन्य धर्मों के लोगों से श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तो कृष्ण के सामने आते नहीं है, कृष्ण का सुंदर रूप नहीं देखते हैं वो लोग। तो देखिए भगवान के सामने दंडवत डालने का कितना फायदा है, और हम लोग रोज डालते हैं तो इसका और कितना फायदा होगा। तो भक्ति भावना से हमें डालना चाहिए, और दंडवत डालते समय सो नहीं जाना चाहिए। छठा, सोलहवा, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए, दंडवत डालें फिर खड़े हो जाए, खड़े होकर फिर भगवान का दर्शन करें, और फिर अगर सत्संग हो तो हम बैठ जाएं, यह भी एक विधि है। सत्रहवा, सत्ताईसवा, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। पुराने जमाने में ये एक बहुत बड़ी प्रथा थी, और आज भी हम ये देखा जाता है तरह तरह अलग अलग तीर्थ स्थानों में। हम जब बेंगलोर में गए थे भी देख रहे थे कि लोग सब सड़क साफ कर रहे थे एक मोहल्ले में। मैंने पूछा क्या बात है, सब माता जी प्रभु जी सब आके झाड़ू लगा रहे थे रास्ते, कह रहे हैं अभी रथ निकलने वाला है। उनके कोई देवी देवता का रथ था, परंतु एक उत्सव था उनका। तो ये प्रथा है भारतवर्ष में शोभा यात्रा निकालने की। जो प्रतिष्ठित या बड़े मंदिर हैं उनमें देखा जाता है कि दो तरह के विग्रह होते हैं। एक तो बड़े विग्रह होते हैं जिनको जिनका दर्शन आके सब लोग करते हैं, लेकिन ये विग्रह इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, इसलिए उनको मंदिर के बाहर नहीं लिया जा सकता। तो सोचिए अगर आपको दिन भर एक ही जगह में बंद किया जाए, रखा जाए, घर के बाहर रहो, घर के अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाना, आपको कैसे लगेगा? कभी कभी आपको भी लगता है ना कि बाहर जाना चाहिए सैर करने के लिए, तो भगवान को भी ऐसे कभी कभी सैर करने ले जाते हैं। तो भगवान को सैर करने कैसे ले जाएं, इतनी बड़ी मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए भगवान के छोटे मूर्ति रहते हैं जो बड़े मूर्ति के बिल्कुल कॉपी है, डिट्टो, और इनको उत्सव मूर्ति कहते हैं, विजय विग्रह कहते हैं, उत्सव विग्रह, जो खास करके शोभा यात्रा के लिए रखे हुए होते हैं। दोनों मूर्तियों की साथ साथ पूजा होती है, लेकिन जब पालखी में ले जाने का समय आता है, रथ में सवार कराने का समय आता है, तो छोटे विग्रहों को लिया जाता है, बहुत छोटे होते हैं। अब भक्तों के बीच में एक छोटी सी बात आपको बताएं, अगर आपको हमारे यहां राधा गोकुलांत की ऊंचाई कितनी है वो बताना हो तो आप कैसे बताएंगे दोनों हाथों से? कोई बताएंगे कैसे? बोलिए, आप बोलिए, हाथ दिखाइए ऐसे ऊपर करके, कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? ऐसे नहीं, और कोई बताइए, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, हाँ छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो ठीक है, परंतु इसका मतलब ये है कि भगवान अनंत हैं, हम इनको इतने से ऊंचाई में उनको बांध के सीमित नहीं कर सकते। केवल हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए वो इस इतनी ऊंचाई में हमारे सामने आए हैं, ऐसा नहीं कि वो हैं इतने ऊंचे। हाँ मूर्ति रूप में इतने ऊंचे हैं हमारे सामने, ये भी सत्य है, परम सत्य है, ये कोई मिथ्या नहीं है। परंतु ये हमें याद दिलाने के लिए कि ये कोई प्रतिमा नहीं है और भगवान वास्तव में अनंत हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है, तो ये बताने के लिए हम ऐसा करेंगे तो उनको सीमित करने की तरह हो गया, ऐसा तो हम ऐसा करते हैं बताने के लिए कि ये हमारी मूर्तियां इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं। तो उत्सव विग्रह ऐसे छोटे होते हैं ताकि आसानी से उनको पालकी में रखा जाए, रथ के ऊपर रखा जाए, जैसे लोग अपने कुटुंब के साथ शाम को दफ्तर से, व्यवसाय से आने के बाद बगीचे में सैर करने जाते हैं, उसी तरह से भगवान भी सैर करने आते हैं। और वो सैर करते उनको भी थोड़ा ताजी हवा मिलती है बाहर, सब देखते हैं सब लोग कैसे हैं, और फिर सब लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और ठीक समय रहता है तो उस समय सब लोग अपने अपने घरों से कुछ न कुछ भोग तैयार करके आते हैं, और एक हलचल मच जाती है सारे मोहल्ले में, अभी आ रहे आ रहे, कहाँ है भगवान, अभी कोने पे, अभी अभी आते होंगे, तो चलो चलो जल्दी तैयार करो, जल्दी हो जाए। फिर भगवान आते हैं, फूल अर्पण करते हैं, कोई कोई आरती उतारते हैं, कोई भोग चढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे संस्था में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो इसी तरह से जगह जगह पर लोग आके आरती उतारते हैं भगवान की, कुछ अर्पण करते हैं, कुछ न कुछ भेंट अर्पण करते हैं। तो कितने लोगों को ऐसे मौका मिलता है भगवान का दर्शन करने के लिए, कुछ सेवा अर्पण करने के लिए। तिरुपति में लॉज है, ऐसे कहीं भी महत्वपूर्ण स्थानों में जाइए। कभी कभी हम लोग यहाँ बेलगाम में भी नगर संकीर्तन में जाते हैं तो कभी कभी पालकी ले जाते हैं जिसमें गौर निताई को ले जाते हैं, उनको सवार करके भक्त लोग पे चामर से उनको हवा देते हैं और वो जाके अपनी कृपा दृष्टि सारे बेलगाम के निवासियों को देते हैं, साथ साथ नगर संकीर्तन भी होता है। तो ये संस्कृति कितनी अच्छी है, रोज भगवान आने हैं आएंगे और उनकी सेवा के लिए हमें जाना है। तो ये भावना इसके पीछे ये है कि हर एक घर में, हर एक दफ्तर में भी भगवान विराजमान होने चाहिए और भगवान के सामने हमारा सब कुछ खोल के उनके सामने रखना चाहिए। घर में भी, मंदिर में जितना भी मंदिर का खर्चा होता है, जितने भी मंदिर में पैसा आता है दान में इत्यादि, वो सब भगवान के सामने रखा जाता है, भगवान को हिसाब किताब दिया जाता है कि श्री श्री राधा गोकुलानंद गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, देखिए आपके मंदिर में इस महीने में दान इतने रुपए आए और इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना इतना, और खर्चा इस चीज में इतना हो गया, इस चीज में इतना हो गया, और फिर हमारे पास इतना पैसा थोड़ा रह गया है, और हमने आशा अगले महीने में हम आशा करते हैं कि आपकी खुशी के लिए हम ये कार्य करें। तो भगवान को जाके ये बताना पड़ता है, हर महीने यहां बताया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके घर में भी जो भगवान विराजे हैं उनके सामने भी जाके आपको घर का हिसाब किताब देना चाहिए। सरकार से भले आप छुपाएं लेकिन भगवान से छुपाए मत। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार से छुपाना चाहिए, लेकिन कोई छुपाए या ना छुपाए, लेकिन कम से कम भगवान के सामने सब खुला होना चाहिए। देखिए भगवान ने इतना थोड़ा इस टाइप का थोड़ा धन है, वो इधर का धन है, लेकिन आपके सामने क्या छुपाए। देखिए अभी आप तो सब कुछ मालूम है और ये आपकी सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ही धन है, हम आपके दास हैं, ये आपके आपका घर में जितने सारे लोग रहते हैं उनके भरण पोषण के लिए है, तो ये ऐसा ऐसा है। और घर में जब हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने जा रहे हैं तो भगवान के सामने हमें बतलाना चाहिए हमारे घर की महत्वपूर्ण बातें, इससे हमारी भावना बढ़ जाती है कि ये कोई प्रतिमा हमारे घर में खड़े हुए नहीं है, बस एक कमरे में बैठे हैं, बस उधर है साइड में, जब जरूरत पड़े जाके थोड़ा बहुत घुमाते हैं अगरबत्ती और चले आते। नहीं, वो तो घर के मालिक हैं, हम उनके दास हैं, वो एक व्यक्ति हैं, जीवित हैं, साक्षात भगवान है वो, और कृपा करके हमारे घर में विराजे हैं। इसलिए हमारे घर की बातें, हमारे घर की योजना सब उनको बताना चाहिए। अगर घर में कुछ तोड़ मोड़ कर रहे हैं, कुछ कमरा बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भगवान को बताना चाहिए, भगवान आपके घर में हम एक कमरा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपसे हम अनुमति लेना चाहते हैं, या हम सोच रहे हैं कि ये घर हमारे लिए अच्छा ठीक नहीं है, तो हम दूसरे घर में जाना चाहते हैं, तो आपकी अनुमति लेना चाहते हैं। तो हर छोटी चीज में हमें भगवान के सामने अपना हमारा हृदय खोल देना चाहिए, और हमारी योजनाओं को बताना चाहिए, हमारे जीवन में क्या चल रहा है उनको बताना चाहिए। इससे हमारे अंदर ये भावना बढ़ जाएगी कि वास्तव में हम दास हैं, ये केवल एक मंदिर में आके दो बार सुनने की बात नहीं है, ये एक सत्य है। तो हर एक घर में ऐसे वातावरण होना चाहिए। और जहां मंदिर बड़े बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि वहां मंदिर के अलग अलग भागों में भी विग्रहों को लिया जाता है। जब एक बार हम मॉस्को में थे, रशिया में, हमें याद है कि वहां गौ निताई विराजे हैं मंदिर में, तो साल में कई बार वो क्या करते हैं कि उन विग्रहों को मंदिर के हर एक कोने कोने में ले जाते हैं, हर एक विभाग में ले जाते हैं, और वहां विभाग में जो भी सेवा करने वाले भक्त हैं वो सतर्क रहते हैं। आज भगवान आने वाले तो सब साफ सुथरा होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक रखना चाहिए, भगवान के स्वागत के लिए कुछ होना चाहिए। तो जो हस्तलेखा का विभाग है, फिर रसोई घर है, और जब ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर जो ऑफिस है, जगह 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 अलग अलग विभागों में भगवान जाते हैं, गौर निताई जाते हैं देखने के लिए मेरे भक्त कैसी सेवा कर रहे हैं मेरे मंदिर में। फिर हर एक मंदिर में सब वहां के डिपार्टमेंट के विभाग के लोग राह देखेंगे, भगवान आए हमारे विभाग में, उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए फूल अर्पण करेंगे। तो कितनी अच्छी भावना निर्माण होती है। तो इसी तरह से बाहर भी जब चलते हैं, बताया जाता है कि हमें यात्रा उनके साथ में करनी चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए या साथ में चलना चाहिए कम से कम। और इसका कितना फायदा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फायदा है इसका। इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत विस्तार में यहां पर समझाते हैं। संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी यहां क्या बोल रहे हैं, फिर आज का प्रवचन समाप्त करते हैं, अगली बार बाकी नियमों के बारे में हम सुनेंगे। इसी नियम के बारे में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रह के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान या न्यास का स्वामी माना जाता है, और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकलें तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चलें। इसलिए हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं। अब जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत करीब है, सब तैयार है ना यात्रा के लिए, तो सब सारे शहर में जगन्नाथ जी घूमेंगे और जितने लोग पुण्यवान हैं वो सब पीछे पीछे आते हैं, यात्रा में भाग लेते हैं। पिछली बार हर साल हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं शायद जो मंदिर में नहीं आते हैं, लेकिन जब यात्रा निकलती है सड़कों में तो यात्रा के साथ साथ वो भी चलते हैं हजारों की संख्या में। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये न ही केवल एक सुंदर दृश्य है परंतु कितने हजारों लोगों को कितना फायदा होता है, ये हमारी कल्पना के बाहर है। तो आज प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली बार से जितने बचे हुए नियम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।
तो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्य आचार्यों का कोई वो नाचने का अर्चा विग्रह के सामने नाचने का कोई उदाहरण है क्या ऐसा?
अवश्य, गौड़ीय वैष्णव पर जहां से माधवेंद्रपुरी हैं हम वर्णन सुनते हैं, और केवल माधवेंद्रपुरी नहीं भागवत में भी कितने सारे ऐसे वर्णन हैं। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति रोति गायति उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्यः। अवंती ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कैसे एक व्यक्ति को जब भगवत प्रेम हो जाता है तो कैसे वो दुनिया की परवाह नहीं करता और वो क्या करता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जब व्यक्ति इस व्रत में स्थित हो जाता है भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, और उसके हृदय में बड़ा स्नेह हो जाता है द्रुत चित्त उच्चैः ही, उसका हृदय पिघल जाता है भगवत प्रेम से, उच्चैः ही वो ऊंचे स्वर में बोलने लगता है भगवान का नाम। हसति, कभी कभी हंसता है। रोदति, रोती, कभी चिल्लाता है कभी रोता है। गायति, कभी गाता है। उन्मादवन नृत्यति, और कभी कभी उन्मत्त अवस्था में नृत्य करता है। नृत्यति गायति, तो इस तरह से भागवत में भी वर्णन है, कितने सारे ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान के कीर्तन करते समय नृत्य भी होना चाहिए साथ साथ। तो केवल ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया ऐसी बात नहीं है, भागवत में भी इसका वर्णन है, कई ग्रंथों में इसका वर्णन है। देवलोकों में भी जब उत्सव हुआ करते हैं वहां भी देवी देवता नृत्य करते हैं कीर्तन करते करते, इसके बारे में भी कितने शास्त्रों में वर्णन आता है। माधवेंद्रपुरी भी ऐसे किया करते थे, और हम तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं तो उन्होंने तो हमें सिखाया है कैसे कीर्तन करते करते हमें नृत्य करना चाहिए। आपने कहा कि भगवान साक्षात सच्चिदानंद विग्रह हैं, केवल मूर्ति नहीं, क्या टाचनी या पिन टोचा, मराठी पर अर्थ बोल रहे हैं, टोचे तो भगवान को दर्द नहीं होता? अवश्य होता है, इसलिए जो भगवान का श्रृंगार करने में लगे हैं भक्त, आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि जो पिन वगैरह हैं बड़े सावधानी से इस्तेमाल करें, कम से कम पिन होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अन्य तरीकों से हमें बड़े अकलमंदी से भगवान के श्रृंगार को करना चाहिए, और अगर पिन का इस्तेमाल करना ही पड़े तो बड़े सावधानी से करें ताकि भगवान को कहीं चोट ना पहुंचे। श्री श्री राधा गोकुलानंद जी को घूमने के लिए क्यों नहीं लिया जाता? गौर निताई जाते हैं, लेकिन हमारे यहां क्या है, बड़े मूर्तियां नहीं है। जिस दिन बड़े मूर्ति आ जाएंगे फिर ये जो छोटे मूर्ति हैं उनको हम ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ये तो यही हमारे मेन मूर्ति हैं, इन्हीं को ले जाएंगे तो सिंहासन खाली रह जाएगा, इसलिए हम नहीं ले जाते। लेकिन आप सबकी शुद्धता से जब एक दिन यहां बड़ा मंदिर होगा और बड़े विग्रह भी आ जाएंगे, तो उस दिन हम राधा गोकुलानंद को अवश्य बाहर पालकी में ले जाएंगे। हम जब पालकी में ले जाते हैं तो गौर निताई को ले जाते हैं, और ये गौर निताई नहीं, अन्य जो गौर निताई विग्रह हैं हम उनको ले जाते हैं। एकादशी को जब भी हम नगर संकीर्तन में जाते हैं तब हमारे गौर निताई के अर्च विग्रह ले जा सकते हैं क्या? हाँ ले जा सकते हैं, केवल इतना ही है कि प्रातः काल में ज्यादा लोग सब सोए हुए होते हैं और ज्यादा लोग बाहर आते नहीं, केवल हमारे संकीर्तन को सुनते हैं अपने अपने बिस्तरों में से लेटे हुए। इसलिए ज्यादातर जब ऐसे शोभा यात्रा निकलती है तो सायंकाल के समय निकलती है। तो शाम के समय अगर हमारा कोई नगर संकीर्तन हो तो उस समय हम अवश्य ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कई भक्त बाहर या कृष्ण प्रसाद जूते पहनकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये उचित है या नहीं? नहीं, उचित नहीं है। प्रसाद ग्रहण करते समय हमें जूते उतारने चाहिए। प्रश्न है, मायावादी के सन्यासी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि भले कोई मायावादी हो लेकिन अगर वो सन्यासी हो तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, परंतु उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने से हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। और महाप्रभु ने पहले ही चेतावनी दी है, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। तो सन्यास का जो सिद्धांत है, प्रतीक है, वैराग्य के प्रतीक जो वो सन्यासी हैं उनको हम नमन करते हैं। अगला प्रश्न है, आपने कहा है कि सन्यासी को देखकर दंडवत डालना चाहिए, लेकिन आजकल जो भौतिक सन्यासी, क्या उनको भी देखकर दंडवत डालना चाहिए? सन्यासी और भौतिक नहीं, अगर कोई सन्यास आश्रम को ग्रहण किया हुआ है तो दंडवत डालने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, संग नहीं करना है। वास्तव में अगर कोई सन्यासी हो तब, लेकिन सड़क पे कई बार हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो केवल गहरे वस्त्र पहन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सन्यासी हो गए। जिन्होंने प्रमाणिक रूप से सन्यास आश्रम ग्रहण किया है उनकी बात हो रही है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न यह है कि हम भगवान के सामने आते हैं अनुमति लेने के लिए कि भगवान हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं तो आपकी अनुमति हम लेना चाहते हैं। तो प्रश्न यह है कि कैसे जानेंगे भगवान ने अनुमति दिया कि नहीं दिया? इसमें दो मार्ग हैं, या तो हम इतने शुद्ध बन जाएं कि डायरेक्ट हमारा टेलीफोन कनेक्शन हो जाए भगवान के साथ, फिर अर्चा विग्रह हमसे बात करेंगे, हमारी श्रद्धा के ऊपर है, भगवान हमको हमसे बात कर सकते हैं। अगर हम उस स्तर पर नहीं हैं तो हमें दो मार्ग हैं और दोनों को साथ साथ देखना चाहिए। एक तो है भक्तों का सलाह, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं, तो अगर भक्त लोग कहते हैं कि हां ये उचित है तो ठीक है। और फिर गुरु साधु शास्त्र, अगर हम जो कर रहे हैं वो हमारे गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है, उसके विरुद्ध नहीं है, तो फिर हम कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति इसमें है। अब प्रश्न है, हम जब सेवा करते हैं तो चींटियां रहते हैं, तब हमें सफाई में चींटियां मर जाती हैं तो अपराध है क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? जहां तक हो सके हमें अपने सेवा के स्थान को इतना स्वच्छ रखना चाहिए कि ऐसे सब चींटियां कॉकरोच वगैरह आए नहीं। लेकिन हमारे अगर कंट्रोल के बाहर हो, नियंत्रण के बाहर हो, और जगह जगह से आते हैं, जैसे अभी बाहर से वगैरह चूहे वगैरह आते हैं, नीचे से चूहे आते हैं, भगवान के आज ही समस्या हुई थी, चूहे अंदर आते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको चींटियों को ऐसे अच्छे तरह से हम साफ रखें कि चींटियां आए नहीं, और आए तो अच्छी तरह से उनको अलग रखें। जब कोई मीठे पदार्थ इधर उधर गिरे हुए रहते हैं तो चींटियां आ जाती हैं। आप स्थान को साफ सुथरा रखेंगे तो चींटियां वहां पर नहीं आएंगे। ये प्रश्न है कि सरकार भगवद गीता के ज्ञान को क्यों नहीं मानते हैं? अज्ञान है, उनको नहीं मालूम है कि सच्चा ज्ञान क्या है। अभी कलयुग के समय में सरकार भी जिन लोगों में, जो लोग अभी राज्य करते हैं, उनकी भी भक्ति भावना नहीं रहती है, इसलिए वो गीता को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरी में जब रथ यात्रा होती है, हर जगह उसी दिन चाहिए लेकिन अलग अलग दिन में होता है, ऐसा क्यों? हाँ, जगन्नाथपुरी में एक विशेष दिन पर होता है और कई जगह में उसी दिन पर भी होता है, परंतु हमें यह जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ये रथ यात्रा का महोत्सव क्यों चालू किया था? प्रचार हेतु। यह महत्वपूर्ण बात है, केवल दिन का महत्व नहीं है, प्रचार का महत्व है। तो जिस दिन भगवान के प्रचार के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना अनुकूल हो, वो दिन ठीक है। जिस दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगन्नाथ जी का दर्शन करने का मौका मिले, संकीर्तन में भाग लेने का मौका मिले, वो ही दिन ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि विग्रह के सामने वरिष्ठ भक्तों को दंडवत डालना चाहिए या नहीं? वास्तव में नहीं डालना चाहिए, भगवान के सामने किसी और को दंडवत नहीं करना चाहिए। हम आएंगे, प्रभुपाद को दंडवत करेंगे और फिर भगवान को दंडवत करेंगे, लेकिन भगवान के सामने वरिष्ठ भक्तों को भी दंडवत नहीं डालें तो अच्छा है। ऐसा भी भक्ति रसामृत सिंधु में एक नियम है। प्रश्न ये है कि जो इंद्रियों के विषय हैं, उनमें यह क्षमता नहीं है कि वो मन को बांध के रखे, परंतु जो आध्यात्मिक स्तर है, भक्ति है, उसकी यह क्षमता है कि वो मन को पकड़ के रखे, लेकिन फिर भी हमारा मन कभी कभी भक्ति से भटक जाता है, ऐसा क्यों? तो हम किस तरह से हमारे मन को ऐसा केंद्रित रखें भगवान की ओर, ताकि हमारा मन भक्ति से भटके नहीं? भगवान इसी प्रश्न का उत्तर गीता में भी देते हैं ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। जब अर्जुन उनको प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीजें जब साथ साथ होंगी तो धीरे धीरे मन केंद्रित हो जाएगा भगवान के चरण कमलों के ऊपर। बिना अभ्यास किए हुए, बिना कोई विधि निषेधों का पालन किए हुए, किसी भी मार्ग में, किसी भी क्षेत्र में संसिद्धि को प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो उसी प्रकार से मन को नियंत्रण करने के पथ में हमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है, कई सालों तक अभ्यास करना पड़ता है। साथ साथ ये जो निषिद्ध कार्य हैं, इनको भी हमें त्यागना चाहिए, तब धीरे धीरे से हमारा मन नियंत्रित हो पाएगा और आध्यात्मिक विषयों में स्थिर रह पाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभुपादाना डाव्या कड़े दंडवत घालवे यानी वर्तमान संन्यासना उज्ज्वल दंडवत घालव का, ऐसा तो नहीं है। ऐसे प्रश्न है कि प्रभुपाद जी को जब दंडवत डालते हैं तो बाईं ओर से, और जो वर्तमान सन्यासी उनको दाहिनी ओर से, ऐसा नियम है क्या? ऐसा नहीं है। हम जब विग्रह के सामने आते हैं, जैसे प्रभुपाद के विग्रह के